राम यह प्रवचन परम शब्द है स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 1993 प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण
संघे शक्ति कलौ युगे कलयुग में संघ में शक्ति है समुदाय में एक शक्ति रहती है। अभी रामायण के पाठ का आयोजन हो रहा है जो परसों से शुरू होने वाला है उसमें भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं ये बहुत बड़े आनंद की बात है। इसमें ताल और स्वर दोनों है। ये गाना होता है ना उस गाने में ताल होता है और स्वर होता है। एक स्वर से बोले सभी और ताल के सहित बोले। स्वर भी 7 स्वर है 2 सप्तक होता है तब पूरा स्वर होता है। 1 सप्ताह आ जाने भी हो जाता है 2 सप्ताह में सप्तक में होता है मानो एक एक शब्द होते हैं। उसे मूर्छा है उसे ग्राम है ऐसी कई बातें हैं। मैं सब जानता नहीं हूं परंतु बात ऐसी है कि संगीत में एक ताकत है। संगीत भी कई तरह का होता है उनमें भगवत संबंधी संगीत है ये बहुत लाभदायक है। साधारण आदमी भी इसमें लग सकता है लग जाता है। भागवत माया है कि निवृत्त तरसी रूपगीय मानात भगोषदात मंत्र श्रोत्र मनोविरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरिजियत बिना प्रशुभनाथ आत्मा रामाष्ट मुनियो निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वन्त्य हेतु भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि तो निवृत्त तरसे रूपगीय मानात भगवान के गुण भगवान का चरित्र भगवान की लीला भगवान का तत्व भगवान का रहस्य भगवान का महात्म्य ये कहने वाले निवृत्त तरसे रूपगीय मानात जिनकी कोई इच्छा नहीं है लोग की परलोक की कोई इच्छा नहीं परमात्म तत्व तो प्राप्त हो चुके हैं और कोई इच्छा उनके रही नहीं है। ये 2 तरह की इच्छा होती है हर एक प्राणियों के मनुष्यों में अपने एक तो सांसारिक पदार्थों के संग्रह और भोग करने की इच्छा और एक परमात्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा। तो प्राप्त करने की इच्छा है उसका नाम इच्छा नहीं है उसका नाम जिज्ञासा है प्रेम पिपासा है ऐसा नाम है और इसका नाम इच्छा है। दोनों को भी कामना भी कह सकते हैं परंतु भगवत संबंधी काम है जो प्रेम है वो उसका नाम ही है। इस बात से काम है दिगमत प्रथाम सहेव काम गोप रामाणाम गोपियों का वो काम शब्द कहा जाए है वो भगवत प्रेम का ही वाचक है। जैसे कल मैंने कहा कि फल होता है उत्पन्न होने वाला परंतु गीता में अनुत्पन्न फल का नाम भी फल आया है ऐसा होता है। तो ऐसे कामना उसको कह सकते हैं भगवत कामा। तो वास्तव में कामना संसार की होती है। वो कामना मुख्य दो, कल मैंने बात बताई थी, एक संग्रह करने की, एक सुख भोगने की। ये कामना ऊंचा उठने नहीं देती। इन दोनों में से कोई कामना हो तो नीचे पतन की तरफ ले जाती है। और भगवान की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, तो ये जो अपने लोगों की इच्छा है कि हम मिलकर के रामायण का पाठ करें सम्मिलित होकर, ये कामना नहीं है, ये निष्काम के ही तुल्य है, भगवत संबंधी कामना है। कामना वो होती है संसार की, जो प्राप्त होने से अधिक बढ़ करके पतन कर जावे। भगवत संबंधी कामना भी बढ़ से बढ़ती हुई होती है, ज्ञान में समाप्त हो जाती है, भक्ति में प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रेम को बताया है। संसार में जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो धनक होता अधिक त्यों अधिक इच्छा होती है। और भगवान का प्रेम होने से ही प्रेम बढ़ता है, उनमें से मादकता विलक्षणता आनंद एक बहुत विचित्र होता है, जिनमें आत्मा नामास्त मुने हो, जो आत्मा नाम है अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान के प्रेम में मस्त हो जाते हैं। वो भी उस प्रेम को चाहते है जो प्रेम का तत्व जानने वाले हैं, अथवा जो सच्चे हृदय से प्रेम को तत्व, प्रेम का तत्व जानना चाहते हैं, उनके लिए मुक्ति भी अच्छी प्रिय नहीं लगती है। वो मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति का निरादर करके भक्ति लोभ हो जाता है। तो वो भगवान का प्रेम होता है, उस प्रेम के लिए ये कथा होती है, प्रेम प्राप्ति के लिए। तो निवृत्त तरस ही उपगीय माना, जो निवृत्त तरस है, जिनकी इच्छा को कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे पुरुष भी भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। निवृत्त तरस ही उपगीय माना भोषात, एक होते हैं निवृत्त तरस भगवान को प्राप्त हुए पुरुष, और एक होते हैं परमात्मा को प्राप्त करने चाहना वाले, कि हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसी चाहना वाले। तो वो अगाड़ी कहते हैं निवृत्त से माना भगोषाराद, वो भगोषद संसार का औषध भी ये है। जिनके कोई इच्छा नहीं, वे भी इनका गाते ही रहते हैं भगवान के घर, जैसे जैसे अपने पाठ करे जैसे पाठ करते रहते हैं। और जो मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए तो खास औषध है ये, मानो मुक्ति प्राप्त करने के, संसार रूपी रोग है, उस रोग से मुक्ति पाने के लिए औषध तो भगवौषधात। अब जिनके मुक्ति हो गई, मुक्ति की इच्छा ही नहीं है, संसार के भोग चाहते हैं, संसार की चाहना है, तो श्रोत्र मनोभिरामात, श्रोत्र और मन को अभिरमण करने वाले चक्र है भगवान के, कानों को भी प्रवृत्त करते हैं, हृदय को भी प्रवृत्त करते हैं। तो कानों में भगवान की कथा सुनने से कर्ण पवित्र होते हैं, नहीं तो काम कान गंदे हैं, कोई काम के नहीं है। शास्त्रों में लिखा है वे कान कीड़ी के बिल ही है, जो भगवान का गुण नहीं सुनते वे कान क्या काम के। जिह्वा भगवान के गुण नहीं गया, जिह्वा दार दुरी बताया है, मेंढक की जैसे मेंढक की जीभ नहीं होती है, वो करता है, ऐसे ही भगवान के गुण न गावे तो जीव ही निरर्थक ही है, उस जिह्वा को धिक्कार दिया है। भारतीय युग तो भले बिनी भाषा तो देह के गेह के द्वारा थली को, पै जगदीश जपे बिन शालग नाहक नागण सी निकली तू, ना उथली हरि नाम को लेन, न क्यों बिजली रसना बिजली जली तू, राम गुणावली गाय बिना गुणहीन गवारणी कान गली तू। जीवा हे जश्नेश रश्नेश रस सारे गे सर्वदा मधुर प्रिय, राम नाम पीयूषम भज जप जिवे निरंतरम। तो ये मीठा लगता है तेरे वत, तो भगवान के नाम और भगवान के गुण के समान मिठास किसी में है ही नहीं, पहले पता नहीं लगता इसका। इसको लगता है जैसे पित्त का दोष होता है उसको मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु मिश्री खटा सूखना शुरू कर दो तो उससे पित्त शांत हो जाते, मीठी लगने लग जाती है। ऐसे सांसारिक आदमियों को ये कथा पहले मीठी नहीं लगती, परंतु ये सेवन करना शुरू कर दे, सुनना शुरू कर दे, कहना शुरू कर दे, शुरू करते करते इनसे ऐसी विलक्षणता आती है, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, नष्ट होने पर उनकी भी भगवान में रुचि हो जाती है। जैसे मिश्री के चूसने से पित्र शांत होते हैं, ऐसे भगवान की कथा से पूर्व के पाप नष्ट होते हैं। तुलसी पूर्व पाप थे हरिचर्चा ने सुहाय, भगवान चर्चा सुहाती नहीं, पर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। समुदाय में भी अगर गीता में भागवत में रामायण में आकर बैठे और पाठ सुने और करें तो उनके भी चित्त शुद्ध हो जाएगा, उनकी भी रुचि पैदा हो जाएगी। ऐसी बात देखने में आती है, सुनने में तो आती है, संत तो कहते ही है, पर देखने में भी आती है। तो जो मुक्ति चाहते है, कल्याण चाहते है, उनके लिए औषध है और श्रोत्र मनोभिरामात, भोगों को विषयों को इंद्रियों के विषयों को चाहते हैं उनको श्रोत्र मन इंद्रिया इनकी भी और मन जो अंतःकरण है उनको भी अभिराम मिलता है, आराम मिलता है। प्रत्यक्ष बात है, जो बाहर रहते हैं रात दिन वो अगर सत्संग में आ जाते हैं, कीर्तन में आ जाते हैं तो उनको इतना आनंद आता है, एक शांति मिलती है। संतों की बाड़ी में आते बलती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए, जल रहे हैं वो भी अगर सत्संग में चले जाए, भगवान की कथा में चले जाए तो बड़ी शांति मिलती है। प्रत्यक्ष बात है ये, ऐसे भोगी कामी वे भी अगर आकर सुनने तो उनमें भी बड़ी शांति मिलती है। वे पहले ऐसा समझते हैं कि इसमें क्या पड़ा है, परंतु सेवन करने से पता लगता है। जिस मिठाई को हम नहीं खाए हैं उस मिठाई का फल हमें पता नहीं लगता, जिस फलों को हमने नहीं चखा है उस फल का स्वाद का पता नहीं लगता। ऐसे ही जब तक ये कथा न सुने, समुदाय में न बैठे, तब तक उनको पता नहीं लगता, परंतु इसमें लग जाते हैं तो उसका रस उनको आता ही है। तो निवृत्त तरसे ही रूप की मानात भवोषधा श्रोत्र मनोभिरामात, तो तीनों के लिए, मुक्त है उनके लिए, फिर मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए, संसार विषय वाले उनके लिए ही बताया। बिना पशुनाथ जो हो, पशुओं का नाश करने वाले कसाई जैसे महान महान ही महान अंतकरण मलिन हो, उनके सिवाय कौन ऐसा है जो इस कथा से उपराम हो जाए। मन ये छूट नहीं सकती कथा, ऐसे कथा का समारोह समुदाय का अपना हो रहा है। तो समुदाय होने से महाराज ने भी कहा ना, अकेला हम पाठ करें तो एकला महात्म होता है, लाख आदमियों के साथ पाठ करें तो एक एक को लाख लाख गुना का होता है। क्यों मन बाहर कहाँ जाए, देखे तो पाठ करने वालों को, सुने तो पाठ को, विचारे करे तो मन में चिंतन करे तो वही ध्वनि आ रही है, और वही प्रवाह बह रहा है समुदाय का, तो इनमें अपने पर बड़ा असर पड़ता है। एक अपने पर असर पड़ता है, ऐसा ही नहीं है, ये जो रेडियो के द्वारा शब्द सुनाई देता है तो वो जिस नंबर का वहां से शब्द प्रसारित किया है उसी नंबर पर सुई होने से उसी नंबर का रेडियो वो सुनाई देगा। दूसरे नंबर जो तरंगा है वायु के, वे तरंगा अलग अलग है, जिस तरंग से शब्द फेंका जाता है उसी के सजातीय पकड़ने वाला यंत्र में वो पकड़ा जाता है, दूसरे तरंग के आया हुआ निकल जाता, पकड़ा नहीं जाता। पर भगवत संबंधी तरंग ऐसी विशेष है तो सब तरंगों में इसका प्रवेश होता है, क्योंकि सब भगवान सर्व व्यापक है, उनका शब्द भी व्यापक है, नाम भी व्यापक है, चिंतन भी व्यापक है, जो व्यापक परमात्मा का सब ये मधुराधिपते रधिरम रखिलम मधुरम सब मधुर है। तो ये ध्वनि यहाँ ही नहीं है, 14 भुवन में जाती है ये ध्वनि। जैसे रेडियो के द्वारा सुनते तो पता लगता है कि ये बोला बिलाज का रेडियो बोला, तो यहाँ बोलते हैं तो उन लोगों में ये इतनी विचित्रता से विस्तृत होता है कि उन लोगों में प्रध्वन करती है। तो त्रिलोकी को पवित्र करने वाली ध्वनि है, इसका उपकार बड़ा भारी है, विशेष उपकार है इसका। पापी से पापी के भी इनके असर करता है, वे भी शुद्ध हो जाते हैं। और इसमें एक विलक्षण बात है, कि ये थम्भा है, ये पंडाल है, ये टीन है, ये जमीन है, तो इस मिट्टी पर भी इसका असर पड़ता है, पौधों पर इसका असर पड़ता है, वृक्षों पर इसका असर पड़ता है। जहाँ संत महात्मा हुए हैं उस जगह में विलक्षणता आती है, पर आती है जानते हुए ही, जो इस विषय के जिज्ञासु है, जानकार है और नहीं समझ सकते। जैसे एक जगह हम सभा में जावे तो वहाँ कपूर का ढेला दो चार पांच रखा हुआ है, तो उसमें सब जगह कपूर सुगंधी आती है, पर सुगंधी सबको आती है, जानने वाले जानते हैं कि कपूर वाले का उसकी है, नहीं जानने वाले कहते हैं सुगंधी तो आती है, क्या बात है, क्या कहाँ से आती है, उस पता नहीं। ऐसे और क्यों क्यों नाशिका का रोग होता है, एक पेनस रोग, वो रोग हो जाता है तो नाक में नाशिका में सुगंधि का पता नहीं लगता। जैसे जिब्बा में गुड़ बार बूटी ले ले तो जिब्बा के ऊपर मिश्र जाने पर कांकरा में जो दीवता रस नहीं आता, ऐसे उनके कानों में उनकी नाशिका पर यूज जिस तरह से होता है तो उनको पता नहीं लगता, कानों से शब्द आते हैं, परंतु नाशिका के द्वारा वो सुगंधि का वायु प्रवेश होता है, वो भीतर गंदे परमाणुओं का नाश करके सुंदर परमाणु पैदा होते हैं, निरोगता की। इस तरह से इन शब्दों को न जानने वालों के भीतर भी वो शब्द जाता है तो जानने वाले तो प्रसन्न होते ही है, सुनने वालों को नया रस पैदा होता है, परंतु कुछ भी न जानने वाला रोग होशा तो उसके भी भीतर प्रवेश होने से इनसे बड़ा असर पड़ता है, पशु पक्षियों पर असर पड़ता है। ऐसे कुत्ते आदि में देख रहे हैं कि वो कीर्तन होता था गोरखपुर में, एक कुत्ता था वो कीर्तन में ही रहता था, केवल ना सत्संग होता वहां बैठा रहता और कीर्तन होता तो उनके भीतर भीतर ही वो रहता था। ऐसे सांप था एक, वो भी इस वजह से सत्संग सुनता था, तो पशुओं पर भी ऐसा असर पड़ता है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में हमारे हनुमान दास जी महाराज थे, वो गीता का अभ्यास करते थे, तो एक बार तो सुलटा पाठ करते, एक बार उल्टा पाठ, दो पाठ हरिमेश करते थे बिना पुस्तक, उल्टा पाठ एक बार कर लिया, सुलटा पाठ कर लिया। तो वो जाते थे बाहर तो रस्ते रस्ते सामने सांप आ रहा था, तो एक दो दिन सांप आया, एक दो आ रहा था, तो वे कहा कि मैं बैठ गया वहां, और उसको कहा था सुनते रहो गीता सुनाओ। वो गीता सुन सामने बैठा रहा, काला नाल था लगा, वो सुनता रहा और सुनाया, उसके बाद फिर नहीं आया, उस दिन चला गया। तो उनके भी काम पड़ता है, सांप होता है ना वो चक्षुष सवा होता है, उनके आंखें यानी आंखों से तो सुनता है, आंखों से देखता है, सांप के कान नहीं होते, कान वो आंखों से सुनता है, तो सामने देखता रहा, वो सुना पाठ बड़ा मस्त हो गया और फिर चला गया, फिर नहीं आया। तो जंतुओं में भी ऐसे जंतु होते हैं कि जिनके ऐसे संस्कार है, वो सुनते हैं तो सुनने से उनके लाभ होता है, शांति मिलती है, नहीं तो वो क्यों आए बार बार, वो जब जाते तो सामने आता था, चेतन बैठ गया था, सुन बैठ तेरे को गीता सुनाओ, तो गीता हनुमान दास की बात है सुनाया। तो ऐसे उन जो मानो जंतु होते हैं, बेसमझ होते हैं, वे भी इस बात का रस लेते हैं, उसमें भी आनंद आता है। एक छोटी थी, छोरी थी, बच्ची को एक साल की होगा अथवा कम हो गई, बहुत छोटी छोकरी, वो रोने लग जाती, सीताराम 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 करके वो देखने लग जाती, रोना भूल जाती, चुप हो जाती थी। ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है, गीता की बताऊ क्या, वो जीती हुई है एक छोकरी है, तो वो उनको गीता बहुत अच्छी याद थी, तो हम गए थे गोरखपुर से पढ़ रोना सत्संग करने के लिए, तो वो छोटी थी, गीता और संख्या से अच्छी याद थी, तो नींद से उठाई तो नींद से उठा बालक है रोने लग जाए, उसको पूछा हर सबरी बात है, पूछा कि भाई बता आठवा अध्याय का चौदवा श्लोक कौन सा है, करण चेता सत्तम योग, आसपास उठ गया, रोना मिट गया और बड़ी प्रसन्नता से कह दिया। तो उनसे एक आनंद मिलता है, एक विलक्षणता गीता में आती है, जो ऐसा रामायण का पाठ ये सुना जाए तो सुनने से बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है। परंतु नाक ठीक नहीं होता, उसमें भी सुगंधि के परमाणु जाकर के भीतर के गंदे परमाणुओं को शांत करते हैं, ऐसे सुनने वाले उस रस को नहीं समझते, तो कानों में ये शब्द जाकर के उनके भीतर अशुद्ध परमाणु है असुर राक्षसी के, उन परमाणुओं को शांत करता है। तो गीता का भागवत का रामायण का श्रवण बहुत शांति देने वाला है। इसमें परीक्षित महाराज हुए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि महाराज आपसे कथा सुनता हूँ तो कथा के सुनने ये अमृत सुनने से तख्तोद ऐसा है तस्वीर के कारण में आता है जी आपके मुख कमल से निकला हुआ ये अमृत मैं कानों और गो से अमृत पीता हूँ तो 7 दिन तक भोजन दूर रात जो भी नहीं पिया और सुनते हैं त्यक्तोदमपी ऐसा साफ शब्द कहा है कि मैं जल भी नहीं पिया है ऐसे मेरे को भी शांति मिलती अमृत पी रहा हूँ ऐसी तृप्ति हो रही है जो भोजन जल छोड़ दिया तो से गुरु कम हो ऐसी बात नहीं ऐसा तृप्त होता मैं मस्त हो रहा हूँ। तो सुनने वाले जो प्रेमी होते हैं उनको इतना आनंद आता है वही पाठ अपने यहाँ होने वाला है और वो भी एक होकर नहीं सैकड़ों हजारों भाई बहन मिलकर के पाठ करते हैं तो मिलकर के एक नागरिक होती है उसमें शक्ति होती है। इलाहाबाद में एक सज्जन ने सुनाया कि हम भगवान नाम कीर्तन करते थे तो उस दिन कीर्तन अच्छा बना तो रेलगाड़ी चलते चलते वहां गाड़ी ठहर गई कोई खराबी नहीं थी इंजन में ठहर गई वो जब तक करते थे तो गाड़ी चल नहीं सकी गाड़ी तो शब्द में विलक्षण शक्ति है। ऐसे शास्त्र में आता है कि दुर्बलात विद्याया और आत्मत्वात बोध रूपिणः शब्द शक्तिर अचंचत्वात विद्वस्तंगो हानतः शब्द में एक अचंत शक्ति है जो हम गाना करते हैं शब्द बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ इस शब्द में महात्माओं ने अचंत शक्ति मानी है। वो अचंत शक्ति क्या है कि जैसे आदमी सोता हुआ गहरी नींद में तो सोने के समय क्या होता है कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया में ज्ञानेंद्रिया मन में मन बुद्धि में बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में धीर हो जाते हैं। तो कितनी नींद गहरी हुई है जिसमें इंद्रिया में गई मन मन गया बुद्धि में बुद्धि अहम और अहम अविद्या में लीन हो गया तो कुछ होश नहीं रहता बेहोशी में पड़ा है। उस आदमी का नाम लेकर बोलो तो वो आदमी जग जाता है कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता वो नाम लेते ही सबोध होता तो नाम लेने से वो जाग जाता है। इसी तरह से अनादिकाल से अविद्या में पड़े हुए जीवों को अपने स्वरूप की विस्मृति हुई हुई है परंतु ऐसा शब्द लगता है तो शब्द में अत्यंत शक्ति है वो तो उनको जगा देता है। कहाँ कान कहे कान कान मन मन बुद्धि में बुद्धि अहम मेरा अहम अविद्या में लीन हुआ तो ऐसे लीन हुई मूर्छित में वहाँ पर शब्द में अचिंत शक्ति मानी है शास्त्रकारों ने तो शब्द में ऐसी शक्ति है। सीधी बात है जैसे सांप काट जाए उसका झाड़ दिया तो सांप का जहर झट जाता है बिच्छू काटता है तो शब्द से बिच्छू उतर जाता है। तो बीज ही भर दिया अमृत बसे कोई जाने जो कोई जाने बोल जी भर दिया अमृत बस है जो कोई जाने बोल विष वास करो उतरे जीभा तने लोल जीभ से जहर उतर जाता है मृत्यु का आदि का ये आप देखते ही हो निजी का हो जाता है रोग शांत हो जाते हैं शब्द से है। तो ये साधारण शब्द से हो जाते हैं भगवत संबंधी शब्द से संसार का रोग दूर हो जाता है ऐसी जीभ में शब्द में शक्ति है। तो पहले मैं इधर कहा था शब्द में दो शक्ति है शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है 5 विषय में एक एक विषय का प्रकाश करने वाली इंद्रिया होती है और परंतु कान में 2 शक्ति है जैसे जिह्वा में है एक ज्ञानेन्द्रिय है एक कर्मेंद्रिय है बोलते हैं ये कर्मेंद्रिय है और रस सकते हैं ये ज्ञानेन्द्रिय एक जीव में 2 इंद्रियां रहती है। इस तरह से शब्द में है कान सुनते हैं और कान में 2 शक्ति है एक प्रत्यक्ष शब्द आता है उसका ज्ञान है और एक शब्द के द्वारा परोक्ष चीज है अभी है नहीं सामने उसका भी ज्ञान होता है। तो शब्द में अत्यंत शक्ति है कान में एक विलक्षण सुनने की शक्ति है। जैसे यहाँ बता आप सुनते हैं भाई राम कृष्ण गोविंद वासुदेव सुना तो सुन लिया आपने ये कान का विषय होता है पर इंग्लैंड है जापान है चीन है ऐसे दूसरे देशों का नाम है तो वो सामने नहीं है आंख से नहीं देखते टेलीविजन ने दिख जा पाए अगर नहीं तो आंख में शक्ति नहीं है उन देशों को देखने पर कान में उनकी शक्ति है वैकुंठ है परमात्मा है जो परोक्ष अभी सामने नहीं है उन बातों का ज्ञान भी कान के द्वारा होता है। तो वो जो शक्ति है ज्ञान का अलौकिक शक्ति शब्द में है केवल कान का विषय शब्द है उसमें नहीं है, वो कान का विषय नहीं है, परोक्ष है, उस विषय का ज्ञान भी शब्द से होता है। वो शब्द अगर भगवत संबंधी होती है तो क्या कहना है, उसमें किसने भी निक्षण आ जाएगी, तो वो शब्द भगवत संबंधी, और वो भगवत संबंधी भी कैसा, उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दें। भगवान राम जी का तो चरित्र है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा उसका कथन है, उनकी कविता है। तो संसार में स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, देवता भी ऋषि भी तपस्वी भी मनुष्य भी अपने स्वार्थ में प्रीति करते हैं, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ दो हित करने वाले होते हैं, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। एक तो भगवान बिना कारण सबको करते हैं, और एक भगवान के प्यारे भक्त एक बिना कारण बिना स्वार्थ बिना मतलब के सबका हित करते हैं। तो भगवान की दी हुई चीज ऐसी है, भगवान की बनाई हुई चीज ऐसी है जो सबका हित करती है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर अच्छे से महात्मा संत भी रहते हैं, दुष्ट भी रहते हैं, पापी भी रहते हैं, गो घातक ब्राह्मण घातक ऐसे ऐसे पुरुष भी पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी ऐसी नाक नहीं कहती वे पापी मेरे पास न रहे, ऐसा पृथ्वी नहीं होते। ऐसे पृथ्वी है, जल है, वो प्यास संतों की भक्तों की उनकी भी प्यास बुझाता है, और पापी अन्यायी चोर डाकू हत्यारे कसाई आदि उनकी भी प्यास बुझाते हैं। उन्हें फर्क नहीं है कि भाई ये पापी है तो उनकी प्यास कम बुझावे, धर्मात्मा पुण्यात्मा तो प्यास ठीक बुझावे, ऐसे नहीं, प्यास संत सबका करता है। जल ऐसे पृथ्वी जल तेज आकाश में जो आता है प्रकाश, ये प्रकाश भी सबको सामान्य रीति से मिलता है, ये कोई किसी का पक्षपात नहीं रखते, संतों का दुष्टों का कुछ नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस और रस गंध, रस आता है जिह्वा में तो सबको ही रस वो भगवान का दिया हुआ सबको वैसा आता है, ऐसे सुगंधी दुर्गंधी सबको आती है। तो भगवान की रची हुई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, आकाश सबको अवकाश देता है, थल सर को भी नभ सर को भी सबको प्रकाश आकाश अवकाश देता है, ऐसा नहीं संत महात्माओं को तो अवकाश को ना दे। तो भगवान और भगवान की रची हुई जो सृष्टि है उस सृष्टि में सबको उनका आसार है, सबको देता है। तो भगवान का गुण है, यश है, कोई पुरुष कैसा ही क्यों हो, पापी हो संन्यास हो, सबको आनंद देने वाले हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त ये सबका कल्याण करने वाले हैं। आपस में जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, चार आश्रम है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, चार वर्ण और चार आश्रम है, अपने व्यवहार के लिए संसार की मर्यादा है शास्त्र की, उसी अनुसार अपने को चलना चाहिए। तो ये मनुष्यों का विभाग किया उसमें ये विभाग है, और बड़ा उत्तम है, ऋषि मुनियों ने बताया है, चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम ये रचा गया है। कोई कहते हैं विभाग किया गया है, अलग अलग बनाए गए, एक ही ब्राह्मण आदि नहीं, ऐसा नहीं है, पैदा होते हैं वैसे ही परंपरा से, उनकी परंपरा आती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अलग अलग बनाए गए हैं। तो शास्त्र की तो मर्यादा है, परंतु भगवान की रचि हुई जो सामान्य सृष्टि है वो सबके लिए गुण देने वाली। जब सामान्य सृष्टि भी गुण देने वाली है तो भगवान कितने सुहृदम सर्वभूताना, भगवान ने अपने को सबका सुहृद बताया है। एक सुहृद होता है, एक मित्र होता है, मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है, वो मित्र होता है, और दूसरा उपकार करे न करे तो उनका भलाई वे करते हैं, ऐसे वो सुहृद होते हैं। उमा संत की इहे बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, मंद करने वाले वे की भला करते हैं। जैसे कुल्हाड़ा है वो काटता है काठ को, तो चंद्र को काटेगा तो उसके कुल्हाड़े के मुख में भी सुगंधि हो जाए। दाहिने से करना चाहिए स्नान करे तो ऊपर नाभि से ऊपर इस हाथ से करना चाहिए, और नीचे नाभि से नीचे घर में इस हाथ से अपना साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में बहुत विधि बताई है विधि विधान से। तो वो करना तो अपनी अपनी जगह ही करना है, उसको उल्ट पुलट करना ये ठीक नहीं है। परंतु भगवान की तरफ से भगवान ने सबका कल्याण करता है, तो भगवान के गुणानुवाद है, सब सुन सकते हैं, चारों घर चारों आश्रम सबको इनका अधिकार है, किसी के लिए मना नहीं है, कथा सुनो पढ़ो, तो सबका उद्धार करने वाली ये चीज है। तो वो ऐसा मैंने बात कही थी एक कि कथा थाल और अर्थ अन प्रसंग रत्नमला है। रज जब ऐसी रीत सो चारों वर्ण जिमाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज हरिजन कोई भी हो सबको तृप्ति देने वाला ये भगवान का गुणानुवाद है, भगवान का जश है। तो कथा है वो थाल है उसमें अर्थ करके समझा देते हैं वो भोजन परोस दिया और उसमें युक्ति प्रत्युक्ति से बात करना है वो घी बना दिया, उसमें दूसरी दृष्टांत आदि आ जाती है वो साग चटनी आ जाती है। ऐसी रीति से चारों वर्णों को जिमाओ ब्राह्मण से चारों वर्णों को चार आश्रमों को ये भोजन दो सबको ही, तो वो सुनना सबके लिए बहुत आनंद देने वाला है। ऐसे विभाग नहीं, ब्राह्मणों को तो कल्याण करेगा और शूद्रों को कल्याण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, सबका कल्याण होगा। तो भगवान की बात ऐसी विचित्र है कि सब कल्याण वाली है। अधिकारी अलग अलग होते हैं तो अधिकार के अनुसार से कार्य विभाग किया गया है। अभी कोई किसी काम में लगे तो योग्यता के अनुसार उसको अधिकार दिया जाता है। हेडमास्टर हेडमास्टर बनाया जाए, प्रधान अध्यापक बनाया जाए तो वो योग्यता वाले को बनाया जाएगा, हर एक को नहीं बनाया जा सकता। तो उसमें सबके लिए वो शांति की आनंद की बात है। तो इस वास्ते ग्राम कथा में भगवान की कथा में सबके सुनने का अधिकार है, कोई अनधिकार नहीं है। अब सुने न सुने आवे न आवे उनकी मर्जी है, स्वतंत्रता है। तो भगवान ने एक मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, मैंने पहले भी कहा है कि स्वतंत्रता दी है, जैसे अपने इस लोक में घूमने की स्वतंत्रता है, परंतु विदेश में जावे फॉरेन में जावे तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसे ही मृत्यु लोक में सब हो सकता है, बट वैकुंठ आदि जाओ स्वर्ग में जाओ तो वो हरे ही नहीं जा सकता, वह स्वतंत्रता नहीं है प्रतिया घूमने की। इसी तरह से यहाँ भगवान की कथा सुना दे के सबको अधिकार है, परंतु काम करना है कोई ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करे, क्षत्रिय वेश इनका विभाग बड़ा सुंदर है, जैसे हाथों का काम है क्षत्रिय है तो रक्षा करना इनका काम है, मस्तक है सबसे पूजनीय है, इसमें सब ज्ञानेन्द्रियां पांचों रहती है तो इसमें सब आता है, इसका अधिकार अलग है। तो बात में कह रहा था कथा सत्संग की बात, तो कथा है सत्संग है ये सबको आनंद देने वाली चीज है, और वो सामूहिक होती है कथा उसमें एक विशेष आनंद होता है। मैंने पहले कहा संघे शक्ति कलौ, सब मिलकर के जो पाठ करते हैं उसका आनंद विलक्षण होता है। तो पाठ होता है सत्संग होता है। एक बात और सुनाऊं आप ध्यान देकर सुने माई माताओं बहनों और भाई भी, कथा होती है ये एक चारों वर्ण जिमा चारों वर्णों का भोजन है। ये जैसे भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को तो भोजन कराते हैं, भोजन के बाद में उनको दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा देते हैं तो वो दक्षिणा लेना चाहिए, भोजन भी कर ले दक्षिणा भी ले जाए। तो इस तरह से कथा सत्संग होता है ये तो है भोजन, इसके बाद जो कीर्तन होता है वो दक्षिणा है। कई हमारी बहन बीच में उठ जाती है, उठो मत थोड़ी देर और ठहर जाओ, कथा होती है, कथा के बाद में आरती होती है, फिर उसका कीर्तन होता है, भगवान नाम कीर्तन समाप्ति हो तब जाना चाहिए। आप लोग विवाह करते हो ध्यान देकर सुनो, आपकी बात बताओ जो आप करते हो, 2-4 लाख रुपया लगा दिया एक बेटी के ब्याह में और ठीक हुआ, 10-15-20 हजार और लगा दो तो वाह 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 हो जाती है, और 20 हजार में लगाने में कंजूसी कर लो, 2-3 लाख तो लगा दिया, तो 15-20 हजार में 10 हजार ही लगाया तो वो आपकी निंदा हो जाएगी, ब्याह बिगड़ जाएगा। तो थोड़े में बिगड़ता है थोड़े में सुधरता है, ज्यादा तो खर्च हो ही गया। ऐसे आप ज्यादा तो बैठे सत्संग तो आपका हो गया, अब 20 में ही उठ गए तो ब्याह बिगड़ जाएगा। ये वो सभा बिगाड़ आदमी है जो सभा में सत्संग में उठ जाए, किसी के जरूरी काम हो तो उस भाई उस बहन को चाहिए दूर बैठे, वहां से ही उठ जाए तो वो सभा बिगड़ती नहीं, और सभा तो हो रही है कीर्तन कर रहा है बीच में उठ जाते हैं तो सभा बिगाड़ का दोष लगता है, वो सभा बिगाड़ होता है। तो ज्यादा ज्यादा समय तो आपका खर्च हो ही गया, 4-5 लाख रुपया लगा दिया, 15-20 हजार में क्या आप कंजूसी करते हो, इतना लगा थोड़ा सा और लगा दो। ऐसे कीर्तन में जब तक समाप्ति नहीं हुई जय बोले नहीं बैठे रहे तो आपके ये सभा ब्याह सुधर जाएगा, नहीं तो ब्याह बिगड़ जाएगा। उस बिगड़ता है थोड़े रुपये में, ज्यादा रुपया तो लग चुका वो तो लग ही जाएगा। तो थोड़ा सा और विचार करो तो आप कितनी सुंदरता आ जाए, कितना आनंद आता है, इस वास्ते जब तक कीर्तन हो जय न बोले तब ठहरे, आरती हो तो आरती हो जब तक ठहरे, भगवान की आरती करो सुनो सब। वो अंत में दक्षिणा है, दक्षिणा भोजन तो किया वो तो पेट में चला गया, दक्षिणा हाथ में रहती घर घर से मिलेगा वो, इस तरह से ऊपर की दक्षिणा है तो वो होनी चाहिए। कथा सुने तो कथा सुनने के बाद शांति से रहे, कीर्तन सुनाए और जय बोल जाए जब आज्ञा हो तब यहाँ से उठे तो उसे ठीक रहे। बीच में उठना अच्छा नहीं, मैं तो कहता हूँ जिनके जरूरी काम हो तो एक तरफ बैठना चाहिए, जिससे सभा बिगाड़ ना हो। बीच में उठता है वो सभा बिगाड़ देता है और उसे शांति नहीं होती है। शास्त्रों में पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में भी बीच में कोई आ जाता है तो उस दिन विघ्न हो जाता है, उस दिन शांत कर देते हैं, पढ़ाई नहीं होगी, वो अनध्याय हो जाता है। हम पढ़े पढ़ा, आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, बीच में आदमी होकर निकलता है तो उसमें दोनों को बाधा लगती है, कहने वाले के मन में भी भाव में टक्कर लगती है, सुनने वालों की भी टक्कर लगती है, तो उसका उसको दोष लगता है। इस वास्ते पढ़ाई में अनध्याय हो जाती है, कोई आदमी पीछे उठ जाता है तो फिर उस दिन पढ़ाई नहीं होती, जोर से वर्षा गरजती है तो गरज से उस दिन फिर अध्याय पाठ नहीं होता। ऐसे कई कारण होते हैं, इसमें ऐसी बात है। एक बात सुनी है कि गुरु पढ़ा रहे हैं, चेला पढ़ रहा है, उसमें होकर अगर हाथी निकल जाए सामने तो उस गुरु के पास में उस ग्रंथ को 12 वर्ष नहीं पढ़ना चाहिए, 12 वर्ष की अनध्याय हो जाती है। ऐसे आपने सुना है ना, काफी वो व्याकरण का भट्टी काव्य है, भट्टी काव्य है जो गुरु जी पढ़ाते थे और हाथी निकल गया तो अब वो ग्रंथ तो पढ़ नहीं सकते, सिद्धांत को नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने भट्टी काव्य पढ़ा है, काव्य जो रघुनाथ जी महाराज की लीला का वर्णन किया है, उसमें शेख सिद्धांत को देखे सब प्रकरण पढ़ा दिए, सब ऐसे उदाहरण दे दिए जो बिल्कुल व्याकरण के उदाहरण, और उनसे काव्य बना दिया रामचंद्र का चरित्र, तो उसको कोई अनध्याय नहीं, क्योंकि उसी बीच में विघ्न हुआ नहीं। तो भट्टी काव्य है जो पढ़े लिखे जानते हैं, खूब उसमें उदाहरण दिया है व्याकरण के, ऐसे संधि और विभक्ति और रूप ऐसा दिया है धातुओं को। जब वो रावण सीता जी को लेकर चला तो वो गिद्धराज आया है, गिद्धराज जय ही राम भारिया जहा त्याग छोड़ दे तीन रूप बनते हैं वहां त्यागेगा, तो तीन रूप दे दिया, जहा सही अरे छोड़ दे तो तीन रूप बन गए, दे दिया भाई तीन विकल्प बनते हैं इसमें मध्यम पुरुष के वचन में, इस तरह से व्याकरण से भर करके व्याकरण बना दिया और भट्टी काव्य बन गया, राम जी का चरित्र हो गया और पढ़ाई हो गई, तो वो अनाध्याय होने से वो फिर नहीं चलता। तो इस तरह से सत्संग भजन में जो विघ्न कर देते वो अनाध्याय हो जाता है, उनमें सुनने वाला दोनों को धक्का लगता है। आपको अनुभव भी होगा, मैं तो समझता हूँ होता होगा, हमारे पर तो असर पड़ता है, जब मैं सुनाता हूँ और प्रश्न पूछ लेते सुनाने लगता हूँ, वो जो प्रश्न पूछता है वो इधर उधर देखता है तो हमारे मन में ऐसी आती है, अरे भाई कम से कम तेरे को तो ध्यान देकर सुनना चाहिए, तेने प्रश्न पूछा है वो तेरे देखने लग जाए, तो हमारे वो भाव बिगड़ जाते हैं। यार सामने से अच्छा विषय करता है बढ़िया, यार आदमी सामने से उठ जाता है तो वो विषय उतना बढ़िया नहीं रहता मेरा, यार शांति सुनते रहो, नहीं तो जाना तो एक तरफ बैठो, फिर सामने मत बैठो, बीच में मत बैठो, एक जगह बैठो फिर उठ जाओ, किसी को पता ही नहीं लगे। तो ऐसे कथा में सुनते हुए भी बीच में गलती हो जाती है तो उससे नुकसान होता है, सुनने वालों का कहने वाले दोनों के भाव बिगड़ते हैं। मेरे तो ऐसा अनुभव था, मेरे पर असर पड़ा है, वो आपको कहता हूँ। तो रामायण सुने पाठ करे तो उनके बीच में ना उठे, किसी के आवश्यक हो जाए तो मैं निषेध नहीं करता हूँ, कोई ऐसा ही बहुत जरूरी काम है तो उठना पड़ता है तो हाथ जोड़ करके वो धीरे से उतरे, पता नहीं लगे बहुत को, इस तरह से कोई बात नहीं है, तो आज्ञा मांग रहे उससे माफी मांग रहे, ऐसे अगर जरा ही पड़े करे क्या ऐसी आवश्यक बात आ गई, तो ऐसे प्रेम से सुनना चाहिए, आदर से क्या कथा हो रही है कैसा हो रहा है सुने। और ये राम नाम ध्वनि में, रामायण की ध्वनि में ऐसी विचित्रता हमने देखी है, जो बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े सज्जन हैं, पुरुष जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो चौपाइयों का केवल उच्चारण होता है, तो चौपाइयों का ज्ञान बहुत कम आदमियों को होता है, एक रागड़ी होती है चौपाई की, उस रागड़ी में बैठे खूब मस्त हो जाते हैं, मेरे विचार में तो ऐसा आता है कि कथा कथा में तो अच्छी बातें सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, पाठ में तो समझने को कुछ मिलती ही नहीं। पूरा पाठ हो रहा है परंतु उस पाठ में ऐसी ध्वनि है, तीन तीन चार चार घंटे तक सुनते हैं। सत्संग करते हुए तो मैंने नींद लेते देखा है, मैं पाठ में तो नींद बहुत कम आती है, आती नहीं प्राय सबकी। सुनते हैं उसमें एक बिल्कुल रस आता है। तो अब ये ऐसा पाठ का मौका आया है तो भाई बहनों से कहना है कि बड़ी तत्परता से मन लगा करके सुने, उसमें ध्वनि में, उस रागनी में, उसमें ताल में रस आता है। एक ये रागनी होती है, उसमें ताल होती है, उसमें ताल ताल ना उसका जो अपन कहते हैं कितनी ताल लागी, इतनी ताल कहीं लागी थाने मारवल से ताल ही कहते हैं समय को, इतना समय बीत गया, इतनी बहुत घनी ताल लगाई था, काम थोड़े काम थोड़ी ताल घनी लगा दी, तो ताल ना उस समय का है, वो समय में उतनी ही माप में लगेगा, उसे एक मात्रा इधर उधर कर दो तो ताल बिगड़ जाएगी, ताल ठीक नहीं होगा। तो ताल ठीक होनी चाहिए भक्त पर, ताल है ये राजा है, वो जो रागिणी राजा है ये सब प्रजा है, ताल बिगड़ जाए तो सब काम बिगड़ जाएगा, अगर ताल ठीक हुए तो सब काम ठीक होगा। इस बार ताल में स्वर में ठीक तरह से भरकना, अपने भी गीता का पाठ किया वो भी ताल और स्वर में किया, तो स्वर में पाठ तो सब करते हैं, ताल में पाठ मैंने और जगह सुना नहीं है कहीं भी किसी जगह ही। अपने ऐसा होता है रागड़ियों में राम गीता गाई जाती है, तो गीता नाम गाड़े का है तो गाड़े की गीता हुई है, तो कोई भगवान की कृपा से नई बात ही पैदा हुई है और कहीं सुनी नहीं हमने किसी से ही। तो ऐसी कृपा कर भगवान देते हैं, बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें सत्संग में आती है। मेरे बहुत उसमें बातें याद है सुनी हुई है, और जो सुनी नहीं याद नहीं है ऐसी बातें विलक्षण प्रकट होती है। मेरे को आश्चर्य आता है कि ऐसी बात कहाँ से आ गई। आप तो समझते हैं कि स्वामी जी जानते हैं, मैं इतना जानता नहीं हूँ, पर आपकी भावना है, उस भावना के कारण से मेरे पैदा हो जाती है बात, तो समुदाय में एक विलक्षणता आती है, उस विलक्षणता से सबको विचित्र लाभ होता है। तो वो लाभ आप और हम लोग विशेषता से ले ले, ऐसा मौका अभी आ रहा है। तो वो रामायण खूब सुने, बैठ करके शांति से मस्त होकर के सुने। दूसरी बात बतावे, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अच्छे सज्जन मिले, संत मिले और दुष्ट कोई ना मिले। प्रार्थना करते हैं सज्जन मारवाड़ में, मारवाड़ी सब मैंने सुना है, हे राम जी भले सु बेटो दीजो दुश्मन हो टाड़े कर जो बने, माने भला आदमी सु बेट कर जो दुश्मन पास टाड़ियो बना, तो दुश्मन को ही मिले नहीं भला आदमी मिले। तो एक बात बताओ कि आज ये जो सुनने के लिए आए हैं, ये शहर में से चुने चुने आदमी आए हैं, दुष्ट हृदय आएगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं। तो इतने एक दो आदमी भी अच्छा मिले तो सुने का मातम है, सैकड़ों और हजारों अच्छे आदमी वही वो इकट्ठे हुए, बाहर से देशों से दूर दूर से लोग रामायण का पाठ करने के लिए आते हैं। कितनी विचित्र बात है, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है ऐसे इकट्ठे इतने आदमियों का दर्शन होना कठिन है। गांव में शहर में जाओ तो कैसे परीक्षा करोगे ये अच्छे आदमी शहर का दर्शन करे, और यहाँ अच्छे अच्छे आदमी आते हैं अच्छे अच्छे, तो उनका दर्शन एक साथ में सैकड़ों का हजारों का दर्शन हो जाए और साथ में गीता पढ़ ले, कितना अहो भाग्य है हमारा। आज कलयुग में गए गुजरे जमाने में और अच्छे आदमी जो गीता में लगे रामायण में कई पाठ में लगे हुए हैं, कितना विलक्षण समारोह है ये, इस बात को समझते नहीं, हरेक को पता नहीं इस बात का। वो क्या जाने भाई, मैं से क्या जाने है? खेत सगा को तो उसे पता नहीं है, भैंस अगर भागवत में क्या समझे भागवत को भैंस। इस वजह से जो अच्छे अच्छे है वही बात आते हैं, कई कई दूसरे भी साथ में आ जाते हैं, कबूतरों को दाना डाले तो वह कौवे भी कई आ जाते हैं, ऐसे कई कई दूसरे भी आ जाते हैं। कोई जूता लेने के लिए आ जाता है तो जूता ही लेता है वो, अगर यहाँ तो भजन ध्यान होता है कल्याण करो अपना उद्धार करो, पर वो जूता ही ले जाए तो जूता वाले थोड़ा ही आ रहे हैं, उसका स्टोर लगता है उसी ले जाता है। तो ऐसे होता है बाजार में सब तरह की चीजें हैं, पर सफाई करने वाला इधर से कूड़ा कचरा लेकर उधर छोड़ देता है तो मैला कूड़ा भर देता है अपने में। इस सत्संग में भी दोष दृष्टि करने वाले कूड़ा कर लिए बिस्टा इकट्ठी कर ली जाते हैं, ऐसे थोड़े आते हैं। ज्यादा तो जब पाठ करने में आते हैं जिनके हृदय में प्रेम है, तो हमारा भी अहो भाग्य है ऐसे प्रेम करने वालों को हमारा दर्शन हो जाए। आप सब भी भाग्यशाली है जो ऐसे साथ पाठ करते हैं, और पाठ करने वाले सुनवे आदमी थोड़े आदमी सब में से सार निकला है। जैसे खांड होती है, खांड का सार पड़ा जाए थोड़े तो मना भर पानी को पीछा कर दे, इस तरह से सार के सज्जन इकट्ठे होकर पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा दर्शन कहाँ हो, गांव में फिरे तो कैसे दर्शन करें हम, हमारे को पता क्या लगे। इन्हें पता आपसे आप लगता है कि जैसी रुचि है वो ही आते है, नहीं रुचि वो नहीं आते। रुचि वाले आदमी तो घरों पर रह गए हैं, क्योंकि घर में काम धंधा होता है तो काम धंधा करने के लिए कईयों को रहना पड़ता है, बहनों माताओं में कई माताओं को रहना पड़ता है। घर का धंधा है, बाल बच्चों का पालन पोषण है, उनको पढ़ाई आदि कराना है, उन काम करने में उनको रहना पड़ता है। तो रुचि वाले आदमी तो पीछे रह जाते हैं, आए दिन से और रुचि वाले बाकी है उसमें, परंतु आए हैं वो तो रुचि वाले ही आए हैं। बिना रुचि क्यों समय बर्बाद करने के लिए, उनको कोई रसी नहीं मिलता, उनको तो उल्टाएगा क्या फायदा है आने में, तो वे आएंगे ही नहीं। तो ऐसे भले आदमियों का सवार वो मिल गया, हमारे को दर्शन मिलता है, उनकी बाणी सुनने को हमारी मिलती है। जो संत है, संत पुरुष है, भगवान में रुचि रखने वाले भी संत है, चाहे गृहस्थ हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भगवान की रुचि है उनकी, नहीं तो क्यों आते महाराज। तो इस बात से सत्संग में आने वाले भी बड़े पूजनीय आदरणीय होते हैं, उनके दर्शन हमारे को हो जाए कितनी आनंद की बात है, विलक्षण बात है। तो उनका समुदाय का समुदाय अपने साथ में, और हम गीता रामायण का पाठ करते हैं, तो पाठ में खूब मन लगा करके ठीक तरह से करें, उपायों का अर्थ समझे हुए पाठ करें। कोई बीच में श्वास लेते हुए कोई चौपाई रह जाए तो मन से पाठ करे, बीच में चौपाई है जो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवारी जय सियाराम जय 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 सियाराम, बीच में तो उस समय में जो पाठ कोई चौपाई बच गई हो उसको पढ़ ले, मन पाठ में छूटे नहीं कोई चौपाई भी, तो बीच में जय सियाराम बोले उस समय में आप उस चौपाई को पढ़ लो, फिर अपने पाठ में लग जाओ, तो पाठ छूटने न पावे। ऐसे सबका सब पाठ पूरा का पूरा करो, और पाठ करने में पुस्तक अपनी अपनी लानी चाहिए। जो रोजाना पाठ करते हैं वे पुस्तक पाठ लाओ, जिस पर पाठ हो जाता वे पुस्तकें पवित्र हो जाती है। विशेष ऐसे तो पवित्र है ही, पर पाठ हो जाने अनुष्ठान हो जाने से वो एक तरह मंत्रान्वित हो गए, उनके मंत्रित मंत्री गया। तो ऐसे पाठ लाओ, और यहाँ से लो तो यहाँ से लेने में भी अपनी पुस्तक रखो, जो अपनी पुस्तक में सहायता मिलती है। अपना ही आसन हो, अपनी ही पुस्तक हो, अपने आसन हो, अपनी माला हो, तो वो रोजाना जपने में उसमें अनुष्ठान करने से माला में पुस्तक में शक्ति आती है। तो अपने अपने घरों से पुस्तक लेनी चाहिए, और यहाँ से पुस्तक ले तो भी अपने पैसा दे करके ले ले, जो वो पुस्तक साथ में रखो अपनी सदाई अच्छी बात है। तो मुफ्त में क्यों ले, मुफ्त अपने लेनी नहीं चाहिए। हमने एक बात सुनी है कि हमने एक प्रबंध किया है कि यहाँ पाठ लेने वाले पैसा दे दो और पुस्तक ले लो, फिर पुस्तक दे दो और पैसा पास 9 दिन तक तो पास में रखो पाठ करो, और फिर पुस्तक दे दो और पैसा अपना पीछे ले लो। तो कितनी बढ़िया बात है, ऐसी बात हमने सुनी, इस समय ऐसा उपाय करने की बात, ऐसा प्रश्न ऐसा ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा सुना है मैंने, तो कितनी बढ़िया बात है। और घरों में अपनी पुस्तकें वो लेकर एक नंबर की बात वो है, नहीं खरीदोगे तो पहले तो पाठ नहीं हुआ है। घरों में रहने वाली पुस्तकों का आपने पहले भी पाठ किया है, यहाँ भी पाठ करेंगे, फिर भी पाठ करेंगे, तो वो पुस्तक एक नंबर की होती है। अपने घर की पुस्तक, अपने आसन, अपनी पुस्तक उसे पाठ करो, अपनी माला उसे जप करो। तो आसन भी अपना होना चाहिए। गीता में भी आया है ना, सुसु देशे प्रतिष्ठा और स्थिर माथनम आत्मना, अपना आसन बिछाओ, दूसरे का आसन नहीं, दूसरे के आसन पर बिछाते से वो रस नहीं है, वो शक्ति नहीं है। अपना रोजाना का भजन पाठ करने का आसन वही आसन बिछाओ, और वही पुस्तक रखो, वही माला रखो, वही समय रखो, नित्य कर्म करो तो वही करो। इस तरह से पाठ करने में अपनी अपनी पुस्तक लाओ, और नहीं तो नहीं यहाँ खरीद लो, वो अपनी कर लो, उस पाठ हो जाए आपका अनुष्ठान हो जाएगा, पुस्तक बड़ी पवित्र हो जाएगी, फिर ले जाओ अपनी पुस्तक, सदैव सदैव साथ रखो, सदैव उम्र भर उसे पाठ करो। नोआ किया हुआ पाठ की शुद्धि होती है। पंडरपुर में वहाँ पाठ किया था तो ये महाराज एक आए पंडित जी, उन्होंने कहा भाई ये पुस्तक बहुत पवित्र हो गई है, जगह 9 दिन पाठ हुआ है, तो कोई खरीदो रखो घर में रखो, तो ये पुस्तक आपको लेनी चाहिए, जिससे पुस्तक पवित्र हो गई। तो ऐसे पाठ करने से पवित्रता आ जाती है, पुस्तकों में, कपड़ों में, आसन में, बाड़ा में, आप में सब जगह पवित्रता आती है। उससे ऐसी पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करो, पाठ करो, रोजाना कितनी बढ़िया बात होती है। तो ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिल गया है। यह हर एक वर्ष में करते हैं, गए वर्ष नहीं कर सके, क्या पता है किस वर्ष में कैसी परिस्थिति बने। इस साल भी परिस्थिति बनाई है तो सज्जनों ने बहुत कुछ कोशिश की है, तब ये मौका मिला है। तो ये मौका लाने वाले जो सज्जन है, मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले, बड़े भाग्यशाली है कि जिन्होंने ऐसा संयोग जुटा दिया जो आप और हम सब लोग भगवान की कथा वो पाठ करेंगे, मिलेंगे, ऐसे मौका का इसका पुण्य बहुत बड़ा है। भोजन करने का अन्न का बड़ा महत्व लिखा है, अन्न में प्राणिनाम प्राणा, तो अन्नदानम महादानम, अन्नदान महादान है, विद्यादानम ततोधिगम, विद्या का दान उससे भी बढ़ता है, उम्र भर विद्या से खाता पीता है, अपना कमा लेता है, और वो विद्या का तो फल है, परंतु ये तो अमर विद्या है, पारमार्थिक विद्या है, इसके समान विद्या नहीं है। ऐसा अवसर मिल गया है, यार पैसे लगाने से मिल गए, पैसे कितने शुद्ध हो गए, कितने आप कोई दान पुण्य करके इतने पैसे शुद्ध नहीं कर सकते, जितने पैसे सत्संग करने के लिए अवकाश दिया और सबको शांति मिलने का अवकाश दिया है, इसमें पैसे लगे वो कितने बड़ी भारी शुद्ध चीज है। वो हरेक को ऐसा मौका मिलता नहीं, खर्चा तो बहुत होता है, ब्याह सब हो जाता है, वकीलों के, वैद्यों के, डॉक्टरों के बहुत सा पैसा चला जाता है, ठगाई में चला जाता है, डाके में चला जाता है, भूल जाते हैं, नष्ट हो जाता है, पैसे अगर ऐसे समारोह में लग जाए कितनी विचित्र बात है। ये बात मेरे मन में भी पहले भी आई थी, मन में संकोच कर दिया लोगों तो ये अन्याय की बात है, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मैं कभी ऐसी प्रेरणा करता भी नहीं हूँ कि तुम पैसा खर्च करो। हरेक समारोह में चंदा होता है, चिट्ठा होता है, हमारे को चंदा चिट्ठा की बात पूरी लगती है, कोई चंदा चिट्ठा भर नहीं होता, किसी से कभी नहीं कहते मेरे परिषद हो। हमारे का सिद्धांत है कि काम करने वाले मनुष्य दुर्लभ है, पैसा दुर्लभ नहीं है, सच्चे हृदय से काम करने वालों के पैसे की कमी नहीं रहेगी, काम करने वाले पुरुषों मनुष्यों की कमी रहती है। वे तत्व से करते हैं तो पैसा तो आपके पीछे आता, जहाँ काम पड़ा है बम्बई आदि में काम पड़ा, एक सज्जन ने ऐसा किया काम समारोह, दूसरे का हमारा पैसा, हाँ हाँ आप लेंगे रहेंगे जरूर, तो लेंगे रहेंगे, एक कोड़ी ने नहीं पैसा नहीं लिया, वो कहते ही रहेंगे हमारे भी कुछ खर्च हो जाए, ठीक है ठीक है, अभी नहीं, अभी हमारी जरूरत नहीं है, जरूरत आपसे लेंगे और किसको लेंगे, और कहाँ जाएंगे आपसे लेंगे, फिर लगा दिया। तो ये तो बड़े भाग्य की बात है जो उस जगह ऐसे समारोह में भगवत संबंधी बातों में पैसा खर्च हो। तो इस तरह से सबने ऐसा किया, तो अपने पैसा नहीं है तो क्या करें, अपने पाठ ही करो, इसे लाभ लो, लाभ ज्यादा विशेष है, पैसों से इतना लाभ नहीं होता है जितना सत्संग से और पाठ करने से लाभ होता है, इतना पैसों से होता है, पर वो भी काम के सदुपयोग होता है। अब समय हो गया क्या कहें, फिर वक्त पर आ जाए कोई बात कह देंगे भाई। नारायण नारायण नारायण।